एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सब ने सुना है ना, रोमन साम्राज्य। फिल्मों में देखा है, कहानियों में पढ़ा है।
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि वो हॉलीवुड वाली चमक दमक या सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों से आगे बढ़े।
सही बात है। आज हम इतिहासकार क्रिस्टोफर केली के विश्लेषण के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतना विशाल साम्राज्य था, ये जो पूरी व्यवस्था थी, ये असल में चलती कैसे थी।
हाँ, मतलब सिर्फ तलवार के जोर पर तो नहीं चल सकती ना इतनी बड़ी चीज सदियों तक।
बिल्कुल नहीं। तो इसके पीछे का वो पूरा सिस्टम क्या था, इस व्यवस्था का असल मकसद क्या था? क्या सिर्फ जीतना और लूटना या कुछ और भी था?
और ये जानना आज भी जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि रोम की कहानी हमें शक्ति, शासन, संस्कृतियों के टकराव, उनके मेलजोल, इन सब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।
हाँ, और ये भी कि इतिहास कैसे आज हमारी दुनिया को शक्ल देता है, आकार देता है।
तो चलिए आज क्रिस्टोफर केली के नजरिए से इस बड़ी पहेली के कुछ टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं।
हाँ, तो शुरू करते हैं लेखक से। क्रिस्टोफर केली, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स और प्राचीन इतिहास के जाने माने प्रोफेसर हैं, कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज के फेलो भी हैं।
अच्छा।
और उनकी खास दिलचस्पी रही है रोमन साम्राज्य के बाद वाले दौर में, मतलब जब साम्राज्य बदल रहा था, चर्च और राज्य के रिश्ते कैसे बदले, शाही ताकत असल में कैसे काम करती थी, इन सब चीजों में।
हाँ, और केली की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? वो जो रोम की एक बनी बनाई छवि है ना, महिमा मंडन वाली।
हाँ हाँ, ग्रैंड वाली इमेज।
बिल्कुल, उसको वो चुनौती देते हैं। वो सिर्फ ये नहीं पूछते कि क्या हुआ, उनका जोर रहता है कैसे हुआ और सबसे जरूरी क्यों हुआ।
सही, वो घटनाओं की लिस्ट नहीं बनाते बल्कि उस पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं जिसने साम्राज्य को चलाया।
और कमाल ये है कि वो इसके लिए हर तरह के सबूत इस्तेमाल करते हैं। खुदाई में मिली चीजें, पुराने सिक्के, पत्थर पर लिखी बातें, उस जमाने के दस्तावेज।
हाँ, और इसी वजह से वो एक बहुत बारीक, मतलब एक क्रिटिकल तस्वीर पेश कर पाते हैं।
उनका नजरिया इसलिए भी खास है क्योंकि वो दिखाते हैं कि रोमन साम्राज्य सिर्फ एक महान सभ्यता नहीं थी, वो जीत, शोषण और कंट्रोल की एक बहुत सोची समझी और अक्सर काफी क्रूर व्यवस्था भी थी।
बिल्कुल, लेकिन यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है।
कैसे, क्या मतलब?
मतलब ये कि केली सिर्फ क्रूरता ही नहीं दिखाते, वो इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि रोम की जो असाधारण कामयाबी थी और वो इतने लंबे समय तक टिका रहा, उसका राज सिर्फ मिलिट्री पावर में नहीं था।
अच्छा, तो फिर किस में था?
की रणनीति में।
इंटीग्रेशन
यानी
जोड़ने की।
हाँ, यानी जीते हुए लोगों को दुश्मन बनाए रखने की बजाय किसी न किसी तरह सिस्टम में शामिल करने की कोशिश, उन्हें अपना बनाने की कोशिश।
ये तो बड़ा विरोधाभास लगता है, एक तरफ क्रूर शोषण, दूसरी तरफ ढल जाना और साथ ले आना।
बिल्कुल।
और केली इसी कॉन्ट्रडिक्शन को, इसी विरोधाभास को समझने में हमारी मदद करते हैं। वो हमें उकसाते हैं कि साम्राज्य को अलग अलग नजरियों से देखें।
जैसे?
जैसे एक रोमन सैनिक के लिए साम्राज्य का क्या मतलब था, एक प्रांत के अमीर आदमी के लिए, एक गुलाम के लिए, एक शुरुआती ईसाई के लिए, सबके अनुभव अलग थे।
हाँ, ये बात तो है।
तो उनका फोकस घटनाओं की टाइमलाइन पर नहीं बल्कि उस व्यवस्था के विश्लेषण पर है जिसने इतने अलग अलग हिस्सों को इतने लंबे समय तक जोड़े रखा। उसका असली ढांचा क्या था और उसका मकसद क्या था? तो चलिए इस व्यवस्था के कुछ जरूरी हिस्सों को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं शासन के तरीके से। केली यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात कहते हैं।
हाँ, क्या?
कि ये इतना विशाल साम्राज्य असल में एक मिनिमलिस्ट स्टेट था।
मिनिमलिस्ट स्टेट, कम से कम सरकारी तामझाम वाला।
हाँ, अब सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हुआ, इतना बड़ा एम्पायर और मिनिमलिस्ट स्टेट।
हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। आज हम सोचते हैं बड़ा साम्राज्य मतलब बड़ी ब्यूरोक्रेसी, हजारों सरकारी अफसर।
बिल्कुल, लेकिन रोम में ऐसा नहीं था। केली बताते हैं कि रोम ने ना शासन का ज्यादातर काम वो लोकल एलीट्स को दे दिया था।
लोकल एलीट्स मतलब प्रांतों के अमीर और असरदार लोगों को।
हाँ बिल्कुल, टैक्स वसूलना हुआ या फिर समझिए लोकल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, शहरों का इंतजाम देखना, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी।
पर वो क्यों करते ये काम रोम के लिए? उन्हें क्या मिलता था इससे? उन्हें मिलता था अपना रुतबा, अपनी दौलत और लोकल लेवल पर अपनी ताकत बनाए रखने की गारंटी। रोम उन्हें प्रोटेक्शन देता था।
अच्छा,
केली इसे एक तरह का फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं।
फ्रेंचाइजी मॉडल, जैसे आजकल कंपनियां देती हैं।
हाँ, सोचिए, रोम सेंटर में है और ये जो प्रांतों के अमीर लोग हैं, ये उसके पार्टनर या फ्रेंचाइजी हैं।
वो अपने इलाके में रोम के नाम पे शासन चलाते थे। वाह, ये तो मतलब कमाल का जुगाड़ लगता है।
और इस मॉडल का मकसद साफ था, कम से कम खर्चे और कम से कम सेंट्रल दखलअंदाजी के साथ इतने बड़े साम्राज्य पर कंट्रोल बनाए रखना।
लेकिन क्या ये व्यवस्था सिर्फ सस्ती थी या इसमें कुछ और भी खास था?
सिर्फ सस्ती नहीं, ये बहुत लचीली भी थी, फ्लेक्सिबल। केली से ही संस्थागत अनुकूलनशीलता कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल अडैप्टेबिलिटी।
अच्छा, अडैप्टेबिलिटी।
हाँ, रोम ने ऐसा नहीं किया कि हर प्रांत पर एक ही जैसा सिस्टम थोप दिया, नहीं, उन्होंने लोकल रिवाजों और जरूरतों के हिसाब से अपनी व्यवस्था में बदलाव किए, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। नागरिकता का अधिकार भी वो एकदम से सबको नहीं दिया, धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक तरीके से उसे बढ़ाया।
और इसका मकसद क्या था?
मकसद था सिस्टम को इतना लचीला बनाना कि वो अलग अलग दबाव झेल सके और लंबे समय तक चल सके।
और इसी से जुड़ा है वो एकीकरण वाला आइडिया, इंटीग्रेशन वाला, है ना?
बिल्कुल, मतलब सिर्फ जीतना और कब्जा करना नहीं था, बल्कि जीते हुए लोगों को किसी तरह साम्राज्य का हिस्सा बनाना भी था।
कैसे करते थे?
कोशिश ये थी कि जीते हुए लोग साम्राज्य को सिर्फ एक बाहरी ताकत ना समझें, धीरे धीरे उसमें अपना फायदा देखने लगे। उनकी वफादारी जीतने की कोशिश की गई, उन्हें रोमन नागरिकता, रोमन कल्चर अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, हालांकि हमेशा जबरदस्ती नहीं की गई।
तो विविधता को मिटाया नहीं बल्कि संभाला,
मैनेज किया। हाँ बिल्कुल, विविधता को मैनेज करने की कोशिश की गई, मकसद था साम्राज्य की नींव को सिर्फ डर पर नहीं बल्कि कुछ हद तक सहमति और साझे हितों पर भी टिकाना।
अच्छा, अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी। केली यहाँ भी कोई लाग लपेट नहीं रखते, वे इसे साफ तौर पर लूट और मुनाफे की अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमी ऑफ प्लंडर एंड प्रॉफिट। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि शुरुआत में तो साम्राज्य का विस्तार हुआ युद्ध में जीती गई भारी लूट से, कब्जा की गई जमीन से और गुलाम बनाए गए लोगों के दम पर। जब साम्राज्य का फैलना थोड़ा रुका तो जोर आ गया भारी भरकम टैक्स पर।
टैक्स? किस तरह के टैक्स?
लोगों की गिनती पर लगने वाला टैक्स था पोल टैक्स, जमीन पर लगने वाला टैक्स था लैंड टैक्स, और ये पैसा प्रांतों से खिंचकर रोम और इटली की तरफ आता था। रोम की जो मशहूर सड़कें हैं, पानी के पुल हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कोलोसियम वगैरह, इन सब का पैसा काफी हद तक इसी सिस्टम से आता था। ये शोषण का एक बहुत बड़ा जरिया था।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पैक्स रोमाना, वो मशहूर रोमन शांति, उसका एक बड़ा मकसद सिर्फ ये पक्का करना था कि साम्राज्य के अंदर शांति बनी रहे, ताकि टैक्स और संसाधन बिना रोक टोक रोम की तरफ बहते रहें?
हाँ, काफी हद तक तो यही बात थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने का एक मुख्य मकसद था आर्थिक शोषण को आसान बनाना, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन कुछ और भी था।
हाँ, केली कहानी का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। रोम ने आर्थिक एकीकरण के लिए भी कदम उठाए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन।
जैसे?
जैसे उन्होंने पूरे साम्राज्य में एक जैसी करेंसी चलाई, मानकीकृत मुद्रा, व्यापार से जुड़े कानून बनाए, समुद्री डाकुओं का सफाया किया ताकि व्यापार के रास्ते सुरक्षित हों।
अच्छा, इससे फायदा हुआ होगा।
हाँ, इससे साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों के बीच व्यापार बढ़ा, कुछ हद तक खुशहाली भी आई और लोगों के आर्थिक हित भी रोम से जुड़ गए।
लेकिन एक चीज हम भूल रहे हैं, गुलामी।
बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, गुलामी इस पूरी आर्थिक व्यवस्था का एक बेहद क्रूर और जरूरी हिस्सा थी। लाखों करोड़ों गुलामों की मेहनत पर ही ये शान चौकट टिकी थी, उनका कोई अधिकार नहीं था।
अब जरा समाज की बात करते हैं। क्या रोमन समाज में सब बराबर थे? केली यहां विजेता और हारने वाले की बात करते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। कौन थे
विजेता? थे मुट्ठी भर लोग, शायद आबादी का 1% से भी कम।
सिर्फ 1%? कौन लोग थे?
इसमें सबसे ऊपर थे रोम के सीनेटर, फिर उनके ठीक नीचे इक्वेस्ट्रियन क्लास के लोग, धनी व्यापारी, जमींदार, और साथ में प्रांतों के वो लोकल अमीर जो रोम के साथ मिलकर शासन चलाते थे। समझिए, साम्राज्य की लगभग सारी दौलत और राजनीतिक ताकत इन्हीं के हाथों में थी।
और हारने वाले यानी बाकी 99% लोग?
वो थे किसान, जो अक्सर दूसरों की जमीन पर खटते थे, भारी लगान और टैक्स के बोझ तले दबे रहते थे। शहरों में रहने वाले गरीब लोग थे, दिहाड़ी मजदूर।
और गुलाम?
और सबसे नीचे गुलामों की एक बहुत बड़ी आबादी, जिन्हें इंसान भी नहीं समझा जाता था, जिनका जीवन पूरी तरह उनके मालिक की दया पर था।
केली बताते हैं कि आम लोगों के लिए जीवन बहुत मुश्किल और छोटा था।
हाँ, बहुत मुश्किल। औसत उम्र शायद 25 से 30 साल ही रही होगी।
बस इतनी कम?
हाँ, बीमारियां, भुखमरी, कुपोषण, ये सब आम बातें थी। और समाज बेहद पितृसत्तात्मक था, मतलब परिवार के पुरुष मुखिया का अपनी पत्नी, बच्चों, गुलामों पर लगभग पूरा अधिकार होता था।
इस सामाजिक ढांचे का मकसद क्या था?
साफ तौर पर ये जो छोटा सा अभिजात वर्ग था उसके दबदबे को बनाए रखना, सामाजिक नियंत्रण।
अब पहचान और संस्कृति की बात करें, क्या साम्राज्य में रहने वाले सब लोग खुद को रोमन मानते थे? क्या रोम ने अपनी संस्कृति सब पर थोप दी थी?
ये थोड़ा पेचीदा मामला है। केली कहते हैं कि रोमन पहचान जो थी वो धीरे धीरे नस्ल या एथनिसिटी पर आधारित होने के बजाय नागरिकता पर आधारित हो गई, सिविक आइडेंटिटी।
मतलब
ये कि आप कहीं भी पैदा हुए हों, अगर आपके पास रोमन नागरिकता है तो आप रोमन हैं। रोमनीकरण जरूर हुआ, लोगों ने लैटिन भाषा सीखी, रोमन कपड़े पहने, रोमन देवताओं की पूजा शुरू की।
तो थोपा गया या लोगों ने खुद अपनाया?
केली जोर देते हैं कि ये अक्सर जबरदस्ती नहीं होता था। खासकर जो लोकल अमीर थे उन्होंने रोमन तौर तरीके इसलिए अपनाए क्योंकि इससे उनका रुतबा बढ़ता था, उनकी ताकत बढ़ती थी।
अच्छा, फायदे के लिए?
हाँ, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी लोकल भाषाएं, अपने रीति रिवाज, अपनी पहचान भी काफी हद तक बनाए रखी। रोम ने अक्सर इसमें दखल नहीं दिया।
तो ये एक तरह का मिक्स बन गया, कल्चरल सिंथेसिस।
बिल्कुल, सांस्कृतिक घालमेल या संश्लेषण, और शायद यही विविधता को संभालने की क्षमता रोम की ताकत बनी। मकसद पूरी तरह एक रूपता लाना नहीं था, बल्कि एक ऊपरी रोमन पहचान बनाना था जिसके नीचे लोकल विविधता बनी रह सके।
और विचारधारा, आइडियोलॉजी, मतलब सिर्फ तलवार और टैक्स से तो इतने लंबे समय तक राज नहीं चल सकता।
नहीं चल सकता, लोगों को यकीन भी दिलाना पड़ता है कि ये सिस्टम सही है या कम से कम जरूरी है।
तो रोम ने इसके लिए क्या तरीके अपनाए?
बहुत सारे तरीके, जैसे बड़ी बड़ी सार्वजनिक इमारतें बनाना, कोलोजियम, मंदिर, बाजार, ये सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं थी।
तो फिर
ये रोमन ताकत, स्थिरता और शान शौकत का खुला प्रदर्शन थी, प्रोपेगेंडा एक तरह से। सिक्कों पर सम्राट की तस्वीर होती थी जो हर कोने तक पहुंचती थी।
हाँ, वो तो देखा है म्यूजियम में।
कवियों और लेखकों ने रोमन कीमतों और इतिहास का गुणगान किया। और एक और दिलचस्प चीज थी, सम्राट पूजा, इम्पीरियल कल्ट।
सम्राट पूजा? क्या लोग सच में सम्राट को भगवान मानते थे?
हमेशा नहीं, ये धार्मिक आस्था से ज्यादा एक राजनीतिक काम था, साम्राज्य और सम्राट के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का एक तरीका।
अच्छा, लॉयल्टी दिखाने के लिए।
हाँ।
लोकल लोग अक्सर सम्राट की पूजा को अपने लोकल देवताओं की पूजा के साथ जोड़ लेते थे। रोम इसे बढ़ावा देता था क्योंकि इससे साम्राज्य के प्रति एकजुटता बढ़ती थी। ये सब तरीके विचारधारा फैलाने और नियंत्रण बनाए रखने के मकसद से इस्तेमाल किए जाते थे।
लेकिन फिर ईसाई धर्म का उदय हुआ, उसने इस व्यवस्था को चुनौती दी।
हाँ, वो एक बड़ा चैलेंज था।
जबकि पारंपरिक रोमन धर्म तो काफी सहिष्णु लगता है, वो कई देवी देवताओं को मानता था, अक्सर जीते हुए लोगों के देवताओं को भी अपना लेता था, तो ईसाई धर्म अलग कैसे था और वो इतना सफल कैसे हुआ?
हाँ, पारंपरिक रोमन धर्म कई देवताओं वाला था, पॉलिथिस्टिक, और काफी हद तक लेन देन जैसा था। आप देवताओं को खुश रखें, वो आपकी मदद करेंगे। और हाँ, सहिष्णु भी था।
तो ईसाई धर्म में क्या अलग था?
पहली बात, वो एकेश्वरवादी था, सिर्फ एक ईश्वर। दूसरी, उसने साम्राज्य के हारने वालों को, गरीब, गुलामों, महिलाओं, हाशिए पर पड़े लोगों को उम्मीद दी, सम्मान दिया, एक मजबूत समुदाय का एहसास दिया।
और सबसे बड़ी चुनौती?
सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ईसाइयों ने सम्राट पूजा करने से इनकार कर दिया, वो सम्राट को ईश्वर मानने को तैयार नहीं थे।
ये तो सीधे सीधे राज्य की सत्ता को चुनौती थी।
बिल्कुल, इसी वजह से शुरुआती दौर में ईसाइयों पर बहुत जुल्म हुए। लेकिन धीरे धीरे यह धर्म फैलता गया और आखिरकार चौथी सदी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने खुद ईसाई धर्म अपना लिया।
ये तो बहुत बड़ा मोड़ था।
हाँ, साम्राज्य के इतिहास में एक निर्णायक मोड़।
और अंत में साम्राज्य का पतन। हम सब ने सुना है कि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, गिर गया, लेकिन केली ये शब्द पतन से थोड़े असहज है।
हाँ, वो इसे एक अचानक हुई घटना नहीं मानते, बल्कि एक लंबी और जटिल प्रक्रिया मानते हैं, जिसे वो रूपांतरण कहना पसंद करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन।
रूपांतरण, पतन क्यों नहीं?
क्योंकि पतन से ऐसा लगता है कि सब कुछ अचानक खत्म हो गया, जीरो हो गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। केली बताते हैं कि साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों की कहानी बहुत अलग रही।
अच्छा, कैसे?
पूर्वी हिस्सा, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, आज का इस्तंबुल, वो ज्यादा अमीर था, ज्यादा स्थिर था। वो बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से लगभग 1000 साल और चलता रहा।
1000 साल और? अरे वाह।
हाँ।
और पश्चिमी हिस्से का क्या हुआ, जहाँ रोम शहर था?
पश्चिमी हिस्सा कई कारणों से कमजोर पड़ गया। अंदरूनी लड़ाइयां बहुत हुई, गृह युद्ध, आर्थिक समस्याएं थीं और बाहर से आने वाले समूहों के हमले बढ़े,
जिन्हें रोमन लोग बर्बर कहते थे।
हाँ, जैसे गोथ, वैंडल, फ्रैंक, वो आकर बसने भी लगे। तो धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप में रोम का सेंट्रल शासन खत्म हो गया और उसकी जगह इन समूहों ने अपने अपने राज्य बना लिए। 476 ईस्वी में आखिरी पश्चिमी रोमन सम्राट को हटा दिया गया। इसी को पारंपरिक तौर पर पतन की तारीख माना जाता है।
लेकिन केली कहते हैं कि ये अंत नहीं था।
बिल्कुल, केली इस बात पर जोर देते हैं कि पश्चिमी यूरोप में जो ये नए राज्य बने, उन्होंने भी रोमन शासन व्यवस्था, रोमन कानून, लैटिन भाषा और ईसाई धर्म के कई तत्व अपना लिए।
तो रोम की चीजें जिंदा रहीं।
हाँ, राजनीतिक सत्ता भले ही खत्म हो गई, लेकिन उसका असर, उसकी विरासत खत्म नहीं हुई। वो मध्ययुगीन यूरोप की नींव में समा गई। ये रोम की व्यवस्था के लचीलेपन और उसके स्थायी प्रभाव का एक और उदाहरण है। तो पतन के बजाय रूपांतरण शब्द शायद ज्यादा सही तस्वीर पेश करता है।
तो अगर हम क्रिस्टोफर केली के इस पूरे विश्लेषण को देखें, तो कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या उभर कर सामने आते हैं?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे अहम बात है रोमन शासन के दो चेहरों को समझना।
दो चेहरे?
हाँ, एक तरफ कानून, व्यवस्था, इंजीनियरिंग के कमाल, सड़कें, शहर, एक हद तक शांति। दूसरी तरफ इसी व्यवस्था की नींव में छिपी क्रूर विजय, भारी आर्थिक शोषण और हिंसा पर आधारित नियंत्रण। पैक्स रोमाना की कीमत बहुत से लोगों ने चुकाई।
दूसरा पॉइंट।
दूसरा, शासन का वो अनोखा मिनिमलिस्ट और फ्रेंचाइजी मॉडल। ये दिखाता है कि कंट्रोल सिर्फ बड़ी ब्यूरोक्रेसी से नहीं आता, लोकल सहयोगियों और लचीली संस्थाओं के जरिए भी कायम रखा जा सकता है। ये सस्ता था, पर इसने सिस्टम को टिकाए रखा।
तीसरा, अर्थव्यवस्था का वो दोहरा चरित्र।
हाँ, ये मूल रूप से एक पैसा खींचने वाली मशीन थी, लूट, टैक्स, गुलामों की मेहनत। लेकिन साथ ही इसने व्यापार और आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा दिया, जिससे साम्राज्य के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े।
चौथा, एकीकरण और सांस्कृतिक संश्लेषण की रणनीति।
बिल्कुल, रोम की असली ताकत शायद सिर्फ अपनी चीजें थोपने में नहीं थी, बल्कि दूसरों की चीजों को अपनाने और विविधता को साधने की क्षमता में भी थी। दुश्मनों को नागरिक बनाना, उनकी संस्कृतियों को जगह देना, ये उसकी लंबी उम्र का एक राज था।
और पांचवा?
पांचवा, अंत नहीं बल्कि रूपांतरण। साम्राज्यों का अंत अक्सर अचानक नहीं होता, वो बदलते हैं, उनका रूप बदलता है, लेकिन उनका असर किसी न किसी शक्ल में बना रहता है। रोम की कहानी हमें यही सिखाती है।
केले के विश्लेषण से कुछ ऐसे विचार निकलते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे ये विचार कि पैक्स रोमाना, वो मशहूर रोमन शांति, असल में हिंसा से ही पैदा हुई थी।
क्रूर जीत से हासिल की गई थी और एक ऐसी फौजी मशीन से कायम रखी गई थी जिस पर साम्राज्य का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता था।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि जिसे हम शांति और व्यवस्था कहते हैं, उसकी भी अक्सर एक छुपी हुई कीमत होती है।
हाँ, या फिर ये वाला विचार, रोम की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद उसकी जीते नहीं बल्कि जीते हुए लोगों को अपना बनाने की क्षमता थी।
दुश्मनों को नागरिक बनाना, विविधता को ताकत में बदलना,
ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जोड़ने की ताकत तोड़ने की ताकत से ज्यादा स्थायी होती है।
और वो फ्रेंचाइजी मॉडल वाला आइडिया, रोमन साम्राज्य को अफसरों की फौज नहीं चलाती थी बल्कि ये एक तरह का फ्रेंचाइजी ऑपरेशन था,
जहां केंद्र सरकार ने शासन का काम लोकल अमीरों को आउटसोर्स कर दिया था।
कितना प्रैक्टिकल, कितना सस्ता जुगाड़, आज के कॉरपोरेट जगत की याद दिलाता है ना। बिल्कुल। और आखिर में, रोमन संस्थाएं इसलिए सफल नहीं हुई कि वे पत्थर की लकीर थीं, बल्कि इसलिए कि वे जरूरत के हिसाब से बदल सकती थीं।
अपना मूल चरित्र खोए बिना विकसित होने में सक्षम थी।
ये किसी भी संगठन, समाज या देश के लिए लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता के महत्व को बताता है।
तो इन सब बातों से आज के जीवन में क्या सीखा जा सकता है? मुझे लगता है पहली सीख तो शक्ति को समझने की है, पावर। वो कैसे काम करती है?
हाँ, वो हमेशा सामने नहीं दिखती।
बिल्कुल,
नियंत्रण के तरीके अक्सर छिपे होते हैं, सिस्टम में बुने होते हैं, चाहे वो प्राचीन रोम हो, आज का कोई देश हो या कोई बड़ी कंपनी।
दूसरी सीख शासन और प्रशासन के बारे में है, एडमिनिस्ट्रेशन। इतनी डाइवर्सिटी वाले समाज को कैसे चलाया जाए, ये सवाल आज भारत जैसे देश के लिए कितना जरूरी है।
बहुत ज्यादा। सेंट्रल कंट्रोल और लोकल आजादी में बैलेंस कैसे बने, संस्थाओं को इतना लचीला कैसे बनाया जाए कि वे संकट में टूटे नहीं बल्कि बदल जाएं।
तीसरा, ये हमें ग्लोबलाइजेशन और कल्चर्स के मेलजोल को एक ऐतिहासिक नजरिए से देखने में मदद करता है। कैसे एक संस्कृति फैलती है, क्या वो हमेशा थोपी जाती है या लोग उसे अपनी मर्जी से भी अपनाते हैं?
चौथा, असमानता का सवाल, इनइक्वालिटी। रोमन समाज भयानक रूप से असमान था।
हाँ, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई समाज कितनी असमानता झेल सकता है, इसका स्थिरता पर क्या असर होता है। विजेताओं और हारने वालों की ये कहानी आज भी उतनी ही सच है।
और पांचवा, ये हमें अपने खुद के इतिहास, अपनी राष्ट्रीय कहानियों पर भी एक क्रिटिकल नजर डालने के लिए प्रेरित करता है।
सही बात है, हर कहानी के कई पहलू होते हैं। क्या हम सिर्फ अपनी जीत और शान की कहानियां सुनते हैं या हम कीमत और कमजोरियों को भी समझने की कोशिश करते हैं?
और हाँ, एकीकरण की रणनीतियां सीखना भी महत्वपूर्ण है। लोगों को कैसे साथ लाया जाए, उन्हें कैसे महसूस कराया जाए कि व्यवस्था में उनका भी कुछ दांव पर लगा है।
हाँ, रोम ने ये किया, भले ही उसके तरीके हमेशा नैतिक नहीं थे।
मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात तो ये मिनिमलिस्ट स्टेट और फ्रेंचाइजी मॉडल वाली थी। ये सोचना ही अजीब है कि इतना बड़ा साम्राज्य इतने कम सेंट्रल कंट्रोल और स्टाफ के साथ चल रहा था। ये दिखाता है कि शक्ति के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं।
और मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख थी वो ये कि रोम की असली ताकत शायद उसकी फौजी क्रूरता में उतनी नहीं थी जितनी उसकी अनुकूलन क्षमता, चीजों को अपने में मिलाने की रणनीति और संस्थाओं के लचीलेपन में थी। और ये कि जिसे हम अंत या पतन समझते हैं वो अक्सर एक बदलाव, एक नए रूप की शुरुआत होता है। चीजें खत्म नहीं होती, बदल जाती हैं।
एक विचार जो मेरे मन में अब रह गया है, क्या आज की बड़ी वैश्विक ताकतें या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जाने अनजाने में रोमन साम्राज्य के कुछ सफल और शायद कुछ क्रूर तरीकों को ही नहीं दोहरा रही?
लोकल ताकतों से गठजोड़, अपने नियम कायदे फैलाना, अपनी विचारधारा का प्रचार करना।
हाँ, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है, ये सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।